ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। लोकसभा ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 232 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। सदन में 12 घंटे से अधिक समय देर रात तक विधेयक पर चर्चा हुई। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ ही वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुव्यवस्थित करना है। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार का भी प्रायोजन है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह धारणा गलत है कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप करेंगे। इससे पहले दिन में विधेयक पेश करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर इस विधेयक के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी और अन्य मुद्दों पर अपनी विफलता छिपाने के लिए यह विधेयक लाई है। वहीं चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुस्लिम समुदाय का भी है। चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में किसी गैर मुस्लिम को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा में कल देर रात वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद कोच्चि के पास मुनम्बम में तटवर्ती गांव के लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन में पटाखे जलाए और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। 600 से अधिक ग्रामीण अपनी आवासीय संपत्तियों पर राज्य वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ पिछले 5 महीनों से अधिक समय से आंदोलन कर रहे थे। बिहार और हरियाणा सहित देश के कई राज्यों तथा संगठनों ने भी वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत किया है। बिहार में पसमांदा पुलिस मुस्लिम समाज के संयोजक डॉक्टर फिरोज मंसूरी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि ये विधेयक पसमांदा मुसलमानों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने संबंधी संवैधानिक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। लोकसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमें कांग्रेस के शशि थरूर, समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा, शिवसेना उद्धव ठाकरे के अरविंद सावंत, तृणमूल कांग्रेस की सायानी घोष और अन्य सांसदों ने भाग लिया। सदन में संवैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के हर संभव प्रयास कर रही है।
सरकार शांति प्रस्थापित करने के सभी उच्चतम कर रही है। राष्ट्रपति शासन आने के बाद दोनों समुदायों से चर्चा भी हुई, दो मीटिंग दोनों समुदायों के सारी संस्थाओं से अलग अलग हुई है। पहली चिंता शांति प्रस्थापित करने की है। जैसा मैंने कहा, 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है।
संसद ने आव्रजन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे स्वीकृति दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य भारत में विदेशी लोगों के आव्रजन, प्रवेश और ठहरने को विनियमित करना तथा आव्रजन कानूनों का आधुनिकीकरण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज सुबह थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। वर्ष 2016 और 2019 के बाद ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। वे आज शाम बैंकॉक में थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेतोंग तान शिनावात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा भारत थाईलैंड द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। इन देशों से आयातित वस्तुओं पर 26% शुल्क लगाया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि शुल्क पूरी तरह से पारस्परिक नहीं होंगे और अमरीका उन देशों द्वारा लगाए गए शुल्कों का लगभग आधा शुल्क वसूलेगा। इस बीच दुनिया भर के कई देशों ने इस शुल्क को अन्यायपूर्ण बताया है। म्यांमार में 7.7 की तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3,003 हो गई है, जबकि करीब 4,500 लोग घायल हैं। इस बीच म्यांमार की सत्ता पर काबिज सेना ने राहत और बचाव कार्य के लिए देश में चल रहे गृह युद्ध पर अस्थायी तौर पर विराम लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।